हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मनस्वी की बात सुनकर मनस्वी ने एकदम उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं तुम पर भरोसा ना कर पाऊँ। तुम तो एक खुली किताब हो अनय, जिसे बस मैं नहीं कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, और ये शायद मेरी ही बदकिस्मती है। ये बात बोलते हुए वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई अपने इतने दिनों के रिश्ते के बारे में सोचकर, जो कि सिर्फ उसने ही बिगाड़ कर रखा हुआ था। मनस्वी की आंखों में आंसू भी आ गए, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि वो अपनी ये वीक साइड अनय को नहीं दिखाना चाहती थी और ना ही उसे जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रखना चाहती थी, क्योंकि अब वो उसे पसंद करती है और चाहती थी कि वो हमेशा उसकी लाइफ में रहे, उसके साथ उसका पति बनकर। उसे ऐसे इमोशनल देखकर अनय को भी अच्छा नहीं लगा। वो कभी भी मनस्वी की बातों को सीरियसली नहीं लेता, खासकर पिछले कुछ दिनों से। जैसा वो बिहेव कर रही थी, उसे लगा था ये सब कुछ बस टेम्पररी है, और अपनी माँ के जाने के बाद शायद मनस्वी थोड़ा अकेला फील कर रही है, और बस इसीलिए वो अनय के आसपास रहती है और उससे वो सब बोलती रहती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे लगा था वो वापस पहले की तरह ही हो जाएगी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि ये सब कुछ टेम्पररी नहीं है। मनस्वी में जो भी बदलाव आए हैं वो सब अच्छे के लिए हैं, और इसके बाद से वो काफी ज्यादा सुधर गई है और बिल्कुल भी पहले की तरह घमंड नहीं दिखाती है, और साथ ही उसके साथ काफी अच्छी तरह से पेश आती है। अनय ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या कहना चाहती हो तुम मनस्वी, और तुम इस तरह रो क्यों रही हो, मैंने क्या ऐसा कह दिया? अपने आंसू पोंछते हुए मनस्वी ने उसकी तरफ देखा और उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं तुमने कुछ भी नहीं कहा, सॉरी, सब मेरी ही गलती है, मैंने ही सब कुछ बिगाड़ दिया है, अपनी लाइफ, तुम्हारी लाइफ, हमारी फैमिली, इसकी और बाकी सब कुछ भी, क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा आज तक, और अपनी कंपनी के बारे में, अपना नाम, पैसा, इसके अलावा और आगे मैं कुछ सोच ही नहीं पाई, और शायद बहुत देर हो गई है, सॉरी। उसकी ये सारी बातें सुनकर अनय को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा और वो उसे समझाते हुए बोला, ये बार बार सॉरी क्यों बोल रही हो, और ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया तुमने, और बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो, हम विराज के बारे में बात कर रहे थे ना, या फिर तुम मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती? अनय ने बात का टॉपिक चेंज करने के लिए विराज का नाम लिया, क्योंकि उन दोनों के बीच सिचुएशन काफी टेंशन भरी हो गई थी, और उस वक्त अनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, इसलिए ही उसने ये बात बोली। लेकिन मनस्वी कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए उसको ये बात सुनकर काफी बुरा लगा, और उसने भी काफी मायूसी से कहा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है अनय, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? सॉरी, मैंने शायद ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, बट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। एक मिनट रुको, अनय अपनी बात संभालने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बात को गलत समझ रही हो। लेकिन मनस्वी उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पर नहीं रुकी और वहाँ से उठकर थोड़ा सा आगे टेबल की तरफ आई, जहाँ पर उसका मोबाइल फोन रखा हुआ था, और हल्की सी फीकी मुस्कुराहट के साथ उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल फोन उठाया और बोली, मैं तो इंसान ही गलत हूँ और शायद हमेशा से ही सब कुछ गलत समझती और करती आई हूँ, लेकिन शायद अब थोड़ा सा सही कर पाऊँ। देखो, ये उसका मैसेज। मनस्वी की इस बात पर अनय ने मायूसी से उसकी तरफ देखा। वो फिर से उसे समझाने के लिए कुछ बात बोलने ही वाला था कि तभी मनस्वी ने अपना मोबाइल फोन उसकी तरफ बढ़ाया और अनय ने भी उसके हाथ से वो मोबाइल फोन ले लिया। मनस्वी के हाथ से मोबाइल फोन लेकर अनय काफी ध्यान से वो मैसेज देखने लगा और मनस्वी वहाँ पर उसके सामने ही खड़ी हुई थी। सुनैना की आँख खुली तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। उसे अभी भी सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था और आंखों में तेज जलन भी महसूस हो रही थी। उसने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों से आंख रब करते हुए दोबारा से आंख खोलने की कोशिश की और इधर उधर देखा। वो जगह अभी भी उसे बिल्कुल भी पहचान में नहीं आई, लेकिन फिर उसने उठने की कोशिश की तो उसे अपने हाथ पैर किसी चीज से जकड़े हुए महसूस हुए, लेकिन वो फिलहाल लेटी हुई थी, और उसने इधर उधर देखा तो उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे और वो एक पुराने से बेड पर बांधी हुई थी। उस कमरे की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रहने लायक था और बेड भी कुछ वैसा ही था। सुनैना के मुंह पर कोई पट्टी बंधी नहीं थी, इसलिए जैसे ही उसे सब कुछ याद आया उसने एकदम ही तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, हेल्प, प्लीज, समवन हेल्प मी, कोई है यहाँ पर? सुनैना की इन तेज चिल्लाने वाली आवाजों का भी शायद कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे सुनकर भी अब तक कोई वहां पर नहीं आया था। तो कुछ देर तक लगातार चिल्लाने के बाद सुनैना को अपना हलक एकदम सूखता हुआ सा महसूस हुआ, तो फिर उसने भी चिल्लाना बंद कर दिया और अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को खींचकर खोलने की कोशिश करने लगी। ऐसा करते हुए उसने आसपास की जगह देखी तो उस कमरे में एक खिड़की थी जिसका कांच टूटा हुआ था और उस पूरी जगह को ही काफी रिपेयरिंग की जरूरत महसूस हो रही थी। कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था। सुनैना ने वहां आसपास देखा कि उसे शायद कोई भी चीज मिल जाए, लेकिन अगर कुछ थोड़ी दूर पर भी होता तो सुनैना वहां तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि उसके चारों हाथ पैर चार अलग अलग रस्सियों से बांधे हुए हैं और वो बेड पर एकदम हाथ पैर फैलाकर बांधी हुई है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। लेकिन अपने दाहिने हाथ को पूरी ताकत से हिलाते हुए उसे रस्सी में से निकालने की कोशिश कर रही थी। सुनैना ने अपने आप से बात करते हुए बड़बड़ाया, पता नहीं ये विराज मुझे कहाँ पर लेकर आया है, कैसी अजीब सी जगह है। आदित्य और उसके सिक्योरिटी वालों को इस जगह के बारे में शायद पता भी नहीं होगा, कैसे ढूंढ लेंगे वो लोग मुझे, और इस विराज का तो कुछ भी भरोसा नहीं है। मेरा मोबाइल फोन भी मेरे पास नहीं है। ओ गॉड, क्या करूंगी मैं, और ये हाथ, ये भी नहीं खुल रहा। ये सब कुछ बोलते हुए सुनैना ने दोबारा से अपने दाहिने हाथ पर एक तेज झटका दिया और ऐसा करने से उसकी कलाई में एक तेज दर्द तो हुआ, लेकिन रस्सी उसके हाथ पर थोड़ी ढीली हो गई। और फिर अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर उसने दोबारा से जोर लगाया और उसके हाथ में थोड़ी लगन लगी, लेकिन उस हल्की सी ढीली हुई रस्सी से काफी कोशिश के बाद उसने अपना दाहिना हाथ उस रस्सी से बाहर निकाल लिया और उसका एक हाथ आजाद हो गया। सुनैना के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आई और वो बोली, यस। इतना बोलते हुए वो अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ की रस्सी की तरफ ले जाने लगी, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो वो एकदम अलर्ट हो गई और उसने दोबारा उसी रस्सी में अपना दाहिना हाथ फिर से डाल लिया और आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करने लगी। लेकिन हल्की सी आंखें उसकी खोली हुई थी, जिसमें उसने देखा कि किसी ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ झांका। वो कौन था ये तो वो नहीं देख पाई, लेकिन दरवाजे पर किसी के होने की आहट से लगा और उसके कुछ पल बाद वो दरवाजा वापस से बंद हो गया। इस इंसिडेंट से इतना तो समझ गई कि विराज के अलावा शायद और कोई भी है वहाँ पर और लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए उसने बहुत ही होशियारी से काम लेने की कोशिश की और कुछ देर के लिए फिर से उसी तरह बेहोश होने का नाटक करने लगी। एक फैंसी रेस्टोरेंट कैफे।
ये एक ऐसी बड़ी और महंगी जगह है जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं और यहाँ पर भीड़ भाड़ भी इतनी ज्यादा नहीं होती। शायद इसीलिए रागिनी ने अपने घर के बजाय अक्षत को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो बड़े से सनग्लासेस और मास्क लगाकर यहाँ पर आई हुई है, जिससे कि अगर उन्हें कोई साथ में स्पॉट कर ले फिर भी वो पहचान में न आए। वो जगह काफी ज्यादा बड़ी, महंगी और रेप्यूटेड है और वहाँ पर ऐसे ही किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। ज्यादातर वहाँ पर बहुत ही बड़े अमीर घर के लोग या फिर सेलिब्रिटी स्टार एक्टर ही आते जाते हैं। अक्षत अपने कई सारे फिल्म मीटिंग के लिए डायरेक्टर और कास्ट से मिलने इस जगह पर आ चुका है, इसलिए ये जगह उसके लिए इतनी नई नहीं है। रागिनी भी इससे पहले एक बार यहाँ पर आई है, इसलिए ही ये जगह उसके दिमाग में थी और उसे लगा कि अगर अक्षत से बाहर कहीं पर मिलना है तो फिर यहाँ पर ही मिलना सेफ होगा। अक्षत रागिनी के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठता हुआ बोला, हे रागिनी, क्या हुआ, यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे, मैं तो तुम्हारे घर भी आ जाता। रागिनी ने बहुत ही बेरुखी से कहा, हाँ लेकिन घर आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर का एड्रेस सभी को पता है और अगर वहाँ पर पैपराजी या फिर कोई भी मीडिया पर्सन आसपास हुआ तो फिर मेरी रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात पर अक्षत इस तरह से एक्टिंग करते हुए बोला जैसे कि रागिनी की बातों से उसे बहुत तकलीफ पहुँच रही है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का, मेरे साथ घूमना फिरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, इसीलिए तुम ऐसा हुलिया बनाकर आई हो जिससे कि कोई तुम्हें ना पहचाने। वाओ, मतलब मेरे साथ रहने में तुम्हें शर्म आ रही है क्योंकि ये तुम्हारी पोजीशन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये बताओ, ऐसा क्या किया मैंने। रागिनी ने अपने सनग्लासेस उतार कर हाथ में पकड़े और अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, अक्षत तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो और बात को कहीं से कहीं और ले जा रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत ही जरूरी बात करने के लिए बुलाया है जो कि शायद घर पर ठीक से ना हो पाती, इसलिए। उसकी बात पर अक्षत ना यकीन से बोला, कम ऑन रागिनी, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या फिर तुम फालतू की बात कर रही हो, और ऐसी कौन सी बात होती है जो घर पर नहीं हो पाती, भला वहाँ पर कौन डिस्टर्ब करता हमें। अच्छा ठीक है, बताओ जल्दी क्या बात है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। रागिनी ने एकदम सीधे ही मुद्दे पर आते हुए पूछा, ये बताओ कि क्या प्लान है तुम्हारे पास आगे का। अक्षत कहीं ना कहीं समझ रहा था कि वो किस प्लान के बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर भी उसने एकदम अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, आगे का क्या प्लान? मतलब तुम्हें इतनी जल्दी है क्या शादी करने की? वैसे हाँ, बच्चे के होने से पहले तो हमें शादी करनी ही होगी ना, नहीं तो सब हमारे होने वाले बच्चे को नाजायज़ बुलाएंगे और मैं वो नहीं सुन पाऊंगा। क्रमशः